अध्ययन लेख 26। इस लेख का अध्ययन 24 से 30 अगस्त के दौरान किया जाएगा। विषय, मेरे पास लौट आओ। ये लेख मलाकी 3 के 7 पर आधारित है, जहां लिखा है, मेरे पास लौट आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। गीत 102, कमजोरों की मदद करें। लेख की एक झलक। यहोवा चाहता है कि जो लोग निष्क्रिय हो गए हैं, यानी जिन लोगों ने सभाओं और प्रचार में जाना छोड़ दिया है, वो उसके पास लौट आएं। यहोवा उनसे गुजारिश करता है, मेरे पास लौट आओ। हम भी ऐसे भाई बहनों की मदद कर सकते हैं जो यहोवा के पास लौट आना चाहते हैं। इस लेख में बताया जाएगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। पैराग्राफ 1, सवाल, जब कोई यहोवा के पास लौट आता है तो उसे कैसा लगता है? पिछले लेख में हमने चर्चा की थी कि यहोवा अपनी तुलना एक ऐसे चरवाहे से करता है जो अपनी हरेक भेड़ की प्यार से देखभाल करता है, और अगर एक भी भेड़ खो जाए तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। ध्यान दीजिए कि जब इसराइलियों ने यहोवा की उपासना करना छोड़ दिया था, तब यहोवा ने उनसे कहा, मेरे पास लौट आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहोवा बदला नहीं है। मलाकी 3:6-7, जो लोग उसे छोड़कर चले गए हैं उनके बारे में भी वो ऐसा ही महसूस करता है। यीशु ने कहा था कि जब इनमें से एक भी यहोवा के पास लौट आता है तो यहोवा को और स्वर्गदूतों को बहुत खुशी होती है। पैराग्राफ 2, सवाल, इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? अब हम यीशु की दी 3 मिसालों पर गौर करेंगे। इन मिसालों से हम सीखेंगे कि हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो यहोवा से दूर चले गए हैं। हम ये भी देखेंगे कि उनकी मदद करने के लिए हम में कौन से गुण होने चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि ऐसे लोगों की मदद करने से हमें कितनी खुशी मिलती है। निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में मेहनत कीजिए। पैराग्राफ 3 और 4, सवाल, लूका 15:8-10 के मुताबिक औरत ने अपना सिक्का ढूंढने के लिए क्यों इतनी मेहनत की? हमें उन लोगों को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी होगी जो यहोवा के पास लौट आना चाहते हैं। ये बात हम यीशु की एक मिसाल से सीखते हैं जो लूका की किताब में दर्ज है। उस मिसाल में यीशु ने एक औरत के बारे में बताया जिसका चांदी का एक सिक्का खो गया था। ये सिक्का बहुत कीमती था और उसे ढूंढने के लिए उस औरत ने बहुत मेहनत की। लूका 15:8-10 में लिखा है, ऐसी कौन सी औरत होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और अगर उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर पूरे घर में झाड़ू ना लगाए और उस सिक्के को बड़े जत्न से तब तक न ढूंढे जब तक कि वो मिल नहीं जाता? और जब वो सिक्का उसे मिल जाता है तो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है, मेरे साथ खुशियां मनाओ क्योंकि मुझे अपना खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि पश्चाताप करने वाले एक पापी के लिए भी इसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत बहुत खुशियां मनाते हैं। यीशु ने यह भी बताया कि जब उस औरत को अपना खोया हुआ सिक्का मिल गया तो उसे कितनी खुशी हुई। दरअसल यीशु के दिनों में कुछ यहूदी माएं अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन 10 चांदी के सिक्के देती थी। हो सकता है कि इस औरत को भी अपनी माँ से 10 चांदी के सिक्के मिले हों। खोया हुआ सिक्का शायद उनमें से एक था। उस औरत को लगा कि वो सिक्का जमीन पर कहीं गिर गया होगा, इसलिए वो दिया जलाकर उसे ढूंढने लगी, लेकिन कम रोशनी की वजह से उसे अपना सिक्का नहीं मिल रहा था। आखिर में उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई, तब धूल में उसे चमकता हुआ वो सिक्का नजर आया। सिक्का देखकर उसे कितनी राहत मिली। ये बात बताने के लिए उसने अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाया। पैराग्राफ 5, सवाल, निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में क्यों मेहनत लग सकती है? यीशु की मिसाल से हम सीखते हैं कि जब कोई चीज खो जाती है तो उसे ढूंढने में मेहनत लगती है। उसी तरह हमें भी उन लोगों को ढूंढने में मेहनत करनी होगी जो निष्क्रिय हो गए हैं। शायद उन्हें सभाओं में आए कई साल हो गए हों। हो सकता है कि वो किसी दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे हों और उस इलाके के भाई बहन उन्हें नहीं जानते हों, पर अब उनमें से कुछ यहोवा के पास लौट आना चाहते हैं। वो फिर से अपने भाई बहनों के साथ मिलकर यहोवा की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में उन्हें हमारी मदद चाहिए। पैराग्राफ 6, सवाल, निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में हम सब कैसे मदद कर सकते हैं? निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में कौन मदद कर सकते हैं? हम सब मदद कर सकते हैं, फिर चाहे हम प्राचीन हों, पायनियर हों, प्रचारक हों या उनके परिवार के सदस्य। शायद आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार निष्क्रिय हो गया हो, या फिर आपको घर घर प्रचार करते वक्त या सरेआम गवाही देते वक्त ऐसा कोई भाई या बहन मिला हो। आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? उनसे कहिए कि अगर वो चाहते हैं कि कोई आकर उनसे मिले, तो आप उनका पता या फोन नंबर अपनी मंडली के प्राचीनों को दे सकते हैं। पैराग्राफ 7, सवाल, थॉमस नाम के प्राचीन से आप क्या सीखते हैं? खासकर प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि वो निष्क्रिय लोगों को ढूंढें। वो ये काम कैसे कर सकते हैं? स्पेन के रहने वाले एक प्राचीन थॉमस पर ध्यान दीजिए। उसने यहोवा के पास लौट आने में 40 से ज्यादा भाई बहनों की मदद की है। वो कहता है, सबसे पहले मैं अलग अलग भाई बहनों से पूछता हूं कि क्या वो किसी ऐसे प्रचारक को जानते हैं जो निष्क्रिय हो गया है। फिर मैं उनसे उस प्रचारक का नाम पता पूछता हूं। ज्यादातर भाई बहन खुशी खुशी ये जानकारी देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों को ढूंढने में वो भी हाथ बटा रहे हैं। जब मैं उन भाई बहनों से मिलता हूं जो यहोवा से दूर चले गए हैं, तो मैं उनके बच्चों और रिश्तेदारों का हालचाल भी पूछता हूं। इनमें से कुछ लोग सभाओं में अपने बच्चों को साथ लाते थे। शायद उनके बच्चे भी एक समय पर प्रचारक थे। यहोवा के पास लौट आने में हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। यहोवा के पास लौटने में उनकी मदद कीजिए। पैराग्राफ 8, सवाल, लूका 15 के 17 से 24 में दी मिसाल में पिता अपने बेटे से कैसे पेश आया? अगर हम किसी निष्क्रिय भाई बहन की मदद करना चाहते हैं, तो हम में कौन से गुण होने चाहिए? ये जानने के लिए आइए यीशु की एक और मिसाल पर ध्यान दें। वो है खोए हुए बेटे की मिसाल। लूका 15 के 17 से 24 में लिखा है, जब उसकी अक्ल ठिकाने आई तो उसने कहा, मेरे पिता के यहां दिहाड़ी पर काम करने वाले कितने ही मजदूर हैं जिनके पास रोटी की कोई कमी नहीं, और एक मैं हूं जो यहां भूख से मर रहा हूं। अब मैं सफर करके वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के और तेरे खिलाफ पाप किया है, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने यहां मजदूर की तरह रख ले। इसलिए वो उठा और अपने पिता के पास गया। अभी वो काफी दूर ही था कि पिता की नजर उस पर पड़ी और वो तड़प उठा। वो दौड़ा दौड़ा गया और बेटे को गले लगा लिया और बहुत प्यार से उसे चूमने लगा। तब बेटे ने उससे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के और तेरे खिलाफ पाप किया है, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मगर पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी जाओ और सबसे बढ़िया चोगा लाकर इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और खुशियां मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जिंदा हो गया है, ये खो गया था और अब मिल गया है। फिर वो सब मिलकर खुशियां मनाने लगे। उस मिसाल में यीशु ने बताया कि ये बेटा घर छोड़कर चला जाता है और अय्याशी करता है, लेकिन जब उसकी अक्ल ठिकाने आती है तो वो घर लौट आता है। उसे देखते ही पिता दौड़कर उसे गले लगा लेता है। बेटे को अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि वो उसका बेटा कहलाने के भी लायक नहीं है। ये सुनकर पिता का दिल भर आता है। वो उसका दर्द अच्छी तरह समझता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। वो उसे पहनने के लिए बढ़िया कपड़े देता है और उसके लौटने की खुशी में एक बड़ी दावत रखता है। पैराग्राफ 9, सवाल, जो यहोवा से दूर चले गए हैं उनकी मदद करने के लिए हम में कौन से गुण होने चाहिए? यहोवा उस मिसाल में बताए पिता की तरह है। वो उन सभी भाई बहनों से बहुत प्यार करता है जो उससे दूर चले गए हैं। वो चाहता है कि वो उसके पास लौट आएं। यहोवा की तरह हम भी उन भाई बहनों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ प्यार और सब्र से पेश आएं और उनसे हमदर्दी रखें। हम ये कैसे कर सकते हैं और ऐसा करना क्यों जरूरी है? पैराग्राफ 9 से संबंधित तस्वीर के बारे में। तीन अलग अलग भाई एक ऐसे भाई की मदद कर रहे हैं जो यहोवा के पास लौट आना चाहता है। वो उससे बात करते रहते हैं, उसे यकीन दिलाते हैं कि भाई बहन उससे प्यार करते हैं और वो ध्यान से उसकी सुनते हैं और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और जानकारी। उनकी मदद कैसे करें जो यहोवा के पास लौट आना चाहते हैं? निष्क्रिय लोगों की मदद करने के लिए हमें उनका अच्छा दोस्त बनना होगा। इसके लिए हमें उनसे बातचीत करते रहना चाहिए और बार बार मिलते रहना चाहिए। उनसे सच्चा प्यार करना चाहिए और उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि यहोवा और भाई बहन भी उनसे प्यार करते हैं। उनकी बात सुनने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए। वापस लेख पर। पैराग्राफ 10। सवाल, निष्क्रिय लोगों की मदद करने के लिए सब्र रखना क्यों जरूरी है? हमें निष्क्रिय लोगों के साथ सब्र से पेश आना चाहिए, क्योंकि उन्हें दोबारा यहोवा के साथ रिश्ता मजबूत करने में वक्त लगता है। जो भाई बहन लौट आए हैं उनमें से कईयों ने कहा कि मंडली के भाई बहन और प्राचीन बार बार उनसे मिलने आते थे, तब जाकर वो मंडली में वापस आए। दक्षिण पूर्वी एशिया की रहने वाली बहन नैन्सी ने कहा, मंडली की एक बहन मेरी अच्छी दोस्त है। उसने एक बड़ी बहन की तरह मेरी बहुत मदद की। वो मुझे याद दिलाती थी कि हमने साथ में कितने अच्छे पल बिताए। जब मैं उसे अपने दिल की बात बताती थी तो वो सब्र से मेरी सुनती थी। वो मुझे अच्छी सलाह भी देती थी। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसने वाकई एक दोस्त होने का फर्ज निभाया। पैराग्राफ 11। सवाल, हमें उनके लिए क्यों हमदर्दी रखनी चाहिए जो चोट लगने की वजह से मंडली से दूर चले गए हैं? हमदर्दी मरहम की तरह काम करती है। ये दिल के जख्म भरने में मदद कर सकती है। कुछ भाई बहन मंडली से इसलिए दूर चले गए हैं कि किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई थी और सालों बाद भी वो उसे भुला नहीं पाए हैं। इस वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। कुछ और भाई बहनों को शायद लगा हो कि उनके साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी सुने और उनकी भावनाओं को समझे। मारिया नाम की बहन, जो एक समय पर निष्क्रिय थी, कहती है, मैं चाहती थी कि कोई मेरी बात सुने, मुझे दिलासा दे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही राह दिखाए। पैराग्राफ 12। समझाइए कि यहोवा का प्यार कैसे एक डोरी की तरह है। बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर का प्यार एक डोरी या रस्सी की तरह है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण पर गौर कीजिए। मान लीजिए आप समुन्द्र में डूब रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। खुद को बचाने के लिए आप हाथ पैर मार रहे हैं। इतने में कोई आपको देखता है और आपकी मदद करने के लिए एक लाइफ जैकेट फेंकता है। आप खुश होते हैं कि अब आप डूबेंगे नहीं। लेकिन बचने के लिए सिर्फ लाइफ जैकेट काफी नहीं है, आपको ठंडे पानी से बाहर भी निकलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि कोई आपकी तरफ एक रस्सी फेंके और आपको खींचकर नाव में ले आए। यहोवा ने उन इसराइलियों के लिए कुछ ऐसा ही किया जो उससे दूर चले गए थे। उनके बारे में उसने कहा, प्यार की डोरी से मैं उन्हें अपनी तरफ खींचता रहा। होशे 11:4। आज जो लोग यहोवा को छोड़कर चले गए हैं उनके बारे में भी वो ऐसा ही महसूस करता है। वो मानो अपनी चिंताओं और परेशानियों में डूबे हुए हैं। यहोवा उन्हें यकीन दिलाना चाहता है कि वो अब भी उनसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि वो उसके पास लौट आए। यहोवा आपके जरिए उन्हें अपने प्यार का यकीन दिला सकता है। पैराग्राफ 13। सवाल, जो लोग यहोवा से दूर चले गए हैं उन पर प्यार का क्या असर हो सकता है? एक उदाहरण दीजिए। जो लोग यहोवा से दूर चले गए हैं हमें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि यहोवा अब भी उनसे प्यार करता है और भाई बहन भी। भाई पावलो की मिसाल लीजिए, जिसका जिक्र पिछले लेख में आया था। वो करीब 30 साल से निष्क्रिय था। वो कहता है, एक सुबह जब मैं घर से निकला तो एक बुजुर्ग बहन मुझे मिली। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की। उनकी बातों का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैं बच्चे की तरह रोने लगा। मैंने उनसे कहा, ऐसा लगता है कि यहोवा ने ही आपको मेरे पास भेजा है। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहोवा के पास लौट आऊंगा। निष्क्रिय लोगों की प्यार से मदद कीजिए। पैराग्राफ 14, सवाल। लूका 15 के 4 और 5 के मुताबिक खोई हुई भेड़ मिलने पर चरवाहा क्या करता है? हमें ऐसे भाई बहनों की मदद करते रहना चाहिए जो मंडली से दूर चले गए हैं। खोए हुए बेटे की तरह उनकी जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ है। वो अपने बीते कल को याद करके अब भी दुखी हो जाते हैं। उनके जख्मों को भरने में वक्त लग सकता है। इसके अलावा शैतान की दुनिया में रहने की वजह से यहोवा के साथ उनका रिश्ता कमजोर पड़ गया है। हमें उनकी मदद करते रहना चाहिए ताकि यहोवा के साथ उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। हम ये कैसे कर सकते हैं? आइए यीशु की एक और मिसाल पर गौर करें, और वो है खोई हुई भेड़ की मिसाल। इसमें यीशु ने समझाया कि खोई हुई भेड़ मिलने पर चरवाहा क्या करता है। वो उसे अपने कंधों पर उठाकर वापस झुंड में ले आता है। चरवाहे ने भेड़ को ढूंढने में पहले ही काफी समय और ताकत लगा दी थी, लेकिन जब उसने देखा कि भेड़ कमजोर है और खुद चलकर झुंड तक नहीं जा सकती, तो वो उसे प्यार से उठाकर वापस ले आता है। लूका 15 के 4 और 5 में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जिसके पास अगर 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो बाकी 99 को वीराने में छोड़कर उस एक को ढूंढने ना जाए? क्या वो उस खोई हुई भेड़ को तब तक नहीं ढूंढता रहेगा जब तक कि वो मिल ना जाए? और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और खुशी से फूला नहीं समाता। पैराग्राफ 15, सवाल। निष्क्रिय भाई बहनों की मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निष्क्रिय लोगों की मदद करने में हमारा काफी समय और ताकत लग सकती है। शायद वो किसी समस्या का सामना कर रहे हों, जिस वजह से उनके लिए यहोवा के पास लौट आना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन यहोवा की पवित्र शक्ति, उसके वचन और प्रकाशनों से हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि यहोवा के साथ उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाए। हम ये कैसे कर सकते हैं? एक अनुभवी प्राचीन कहता है, जब भाई बहन यहोवा के पास लौट आने का फैसला करते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोगों के साथ दोबारा बाइबल अध्ययन किया जाता है। फुटनोट: कुछ भाई बहनों के साथ अध्ययन करते वक्त परमेश्वर के प्यार के लायक बने रहिए किताब के कुछ हिस्सों पर चर्चा की जा सकती है। दूसरे भाई बहनों के साथ यहोवा के करीब आओ किताब से अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन करते वक्त किताब के अध्यायों पर सिर्फ सरसरी नजर डाली जा सकती है। इन भाई बहनों का कौन अध्ययन कराएगा, ये मंडली सेवा समिति तय करती है। फुटनोट समाप्त। इसलिए अगर आपसे किसी ऐसे भाई या बहन का अध्ययन कराने के लिए कहा जाता है तो ऐसा करने के लिए तैयार रहिए। यही भाई आगे कहता है, जो प्रचारक ऐसे भाई बहनों का अध्ययन कराते हैं उन्हें एक ऐसा दोस्त बनना चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और अपने दिल की बात बता सकते हैं। कुछ और जानकारी। यहोवा के प्यार का सबूत। यहोवा के पास लौट आइए ब्रोशर निष्क्रिय लोगों की बहुत मदद कर सकता है। ये ब्रोशर दोबारा उनमें ये इच्छा जगा सकता है कि वो यहोवा के पास लौट आए। मारिया, जिसका जिक्र लेख में किया गया है, कहती है, ये ब्रोशर पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि यहोवा मुझसे प्यार करता है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कैमरून की रहने वाली फ्लोरा कहती है, यहोवा के पास लौट आइए ब्रोशर के भाग 4 से मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे यहोवा से दिल खोलकर बात करने की हिम्मत मिली। मैं अपने हालात के बारे में प्राचीनों से भी बात कर पाई जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। बुल्गारिया की रहने वाली तात्याना कहती है, ये ब्रोशर पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि खुद यहोवा मुझसे लौट आने के लिए कह रहा है। लोग चाहे किसी भी वजह से उससे दूर चले गए हों, वो अब भी उनकी परवाह करता है। स्वर्ग में और धरती पर खुशियां। पैराग्राफ 16। सवाल: निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में स्वर्गदूत कैसे हमारी मदद करते हैं? कई अनुभवों से पता चलता है कि निष्क्रिय लोगों को ढूंढने में स्वर्गदूत भी हमारी मदद करते हैं। इक्वाडोर के रहने वाले सिल्वियो का उदाहरण लीजिए। वो यहोवा के पास लौट आना चाहता था, इसलिए उसने गिड़गिड़ाकर यहोवा से विनती की। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि दो प्राचीनों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वो उसकी मदद करने में फौरन लग गए। पैराग्राफ 17। सवाल: निष्क्रिय लोगों की मदद करने से हमें क्या फायदा होता है? जब हम निष्क्रिय लोगों को यहोवा के पास लौट आने में मदद करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ध्यान दीजिए कि एक पायनियर भाई जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बहुत मेहनत करता है कहता है, जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो यहोवा के पास लौट आए हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि यहोवा इन भाई बहनों को शैतान की दुनिया से बचाकर अपने पास वापस ले आया है। मेरे लिए ये एक सम्मान की बात है कि मैंने यहोवा के साथ मिलकर उनकी मदद की। पैराग्राफ 18। सवाल: अगर आपने सभाओं में जाना और प्रचार करना बंद कर दिया है तो आप किस बात का यकीन रख सकते हैं? क्या आपने भी सभाओं में जाना और प्रचार करना बंद कर दिया है? अगर हां, तो यकीन रखिए कि यहोवा अब भी आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके पास लौट आएं। ऐसा करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। आपको काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन यकीन रखिए, खोए हुए बेटे की मिसाल में बताए पिता की तरह यहोवा आपका इंतजार कर रहा है और वो खुशी खुशी आपका स्वागत करेगा। आपका जवाब क्या होगा? निष्क्रिय लोगों को ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी मदद करने के लिए हम में कौन से 3 गुण होने चाहिए? हमें क्यों उनकी मदद करते रहना चाहिए? गीत 103। चरवाहे, आदमियों के रूप में तोहफे। लेख समाप्त।